इसलिए यहाँ पर अन्नकूट नाम से विख्यात गोवर्धन सिंह पर अवस्थानकारी कृष्ण को संतोष मैंने निवास कर कूट पर जो निवास कर कौन कूट अन्नकूट अथवा गोवर्धन के सिंह पर उसके ऊपर में जो से गोवर्धन सिंह विराजित भगवान श्री मधुसूदन मधुसूदन मधु आस्वादन करने वाले सूदन भ्रमर के रूप में किसका मधु गोपियों का मधु प्रेम रूपी मधु का आस्वादन करने वाले कृष्ण के चरण जुगलों में रति रास भवे का। अब रति रास माने क्या है रास और रति
रति आस
इसको भी तो दे
रास में रति
रास में रति होती है। अच्छा रति किसको कहते हैं पहले अवस्था में ये भाव को कहते हैं प्रेम की अंकुर प्रेम के अंकुर को रति कहते हैं या भाव कहते हैं रत्यंकुर भी कहते हैं रति जो प्रेम की पहली स्थिति किंतु यहां पर इनका मतलब नहीं है रास में रति अर्थात रास उत्सव हो रहा पहले उत्सव बतलाया इसलिए रास उत्सव में रति होती है उसकी। अब रति वहां पर समझो कौन सा गोपियों का जो रास हुआ महाभाव इत्यादि में जो रति हुई उसमें यहां पर रति का तात्पर्य है विलास अर्थात निरंतर प्रेम प्रेम की सेवा अथवा यहां पर तीव्र क्यों क्या भवे तीव्र रति रास हो रति रास हो भवे तीव्र तो यहां पर तीव्र को इसका विशेषण लगा दो तीव्र रति रास हो भवे तो तीव्र माने क्या दुर्निवार माने जिसका निवारण नहीं किया कठिनता से जिसका जिसको दूर किया जा सकता है स्वाभाविक रूप में नहीं चाहने पर भी हृदय में वो सब समय आता रहता है ऑटोमेटिक रूप में स्वाभाविक रूप में अनच्छिन्न गति से कोई गति नहीं की मधु तैल धारावत अविच्छिन्न गति से अपने आप आए हम लोग स्मरण करते हैं तब तो नहीं आते और उस समय क्या होगा उन महात्माओं के संग से उनके मुख से झरते हुए अनायास ही जो हरि कथा जो प्रवाहित होती है उसके श्रवण करने से क्या होगा अनायास रूप में निरंतर तैल धारावत अविच्छिन्न गति से वो शक्ति यह है महात्मा सत्य और वो क्या होगा भवे तीव्र रति रास हो कृष्ण की जो ऐसी सब लीलाएं हैं गोवर्धन में कुंजों में जो रति रास इत्यादि जो है उसमें तीव्र लालसा उत्पन्न होती है अर्थात कृष्ण के संग में रास क्रीड़ा में तीव्र लालसा व्यसनार्दन व्यसन अर्दन व्यसन माने पाषण व्यसन माने पाषण किससे वासना संसार की वासना ये चैन माने श्रृंखला की तरह ये है एक पर एक तरह तरह की व्यसन ये सब होती है इनको हटाना बड़ा भारी मुश्किल है तो व्यसनार्दन अशेष संसार दुख का नाश हो जाता है चैन के रूप में जो कामनाएं वासनाएं हमको निरंतर संसार में प्रवाहित करती हैं साधु संग से ये सब अनायास ही हो जाता है और उसके बदले में चैन की तरफ अपने आप कृष्ण की ये लीला कथाएं हृदय में अपने आप को निरंतर नित्य निरंतर उत्सव होने लगता है जब ये सब न हो तो समझो कि हमारे अंदर में कुछ त्रुटि है इसलिए वो त्रुटि को जो सच्चा साधक है निर्वस्त साधक है तो उसको ग्रहण करेगा और नहीं तो क्या करेगा जिस समय वो अपनी वाणी रूपी कुठार से तलवार से उसको जब काटेंगे ना उन वैष्णवों को श्लोक है मनोव्यासंग उक्ति भी अपनी उक्ति रूपी तलवार से उन वैष्णवों को छेदन करते हैं तो वो साधक वो तो साधक ठीक है नहीं, वो भयंकर दुर्दांत तो उठता है और उसको बदला लेने की चेष्टा करता है। तुम लोग के अंदर में ऐसी भावनाएं ना हो, भजन करने की ये सब कुठा से निर्मोही होकर के उस समय का, जैसे कि डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं निश्चिंत हृदय से, किंतु उसको बेहोश कर देते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाता है, नहीं तो 10 आदमी पकड़ने पर भी कुछ नहीं कर सकता उसको। इसलिए कहते हैं यदि कोई सच्चा साधक हो तब तो उसके लिए तो ये परम कल्याण युक्त होगा अमृत, और नहीं तो दूसरे क्या करेंगे, विरोधी बन, और विरोधी बन करके अपना यह काल पर काल दुई को खावाई लू की खोई वाई लू साधु संतों का, गुरु जी का कोई नहीं बिगाड़, भगवान का क्या कोई बिगाड़ेगा। इसलिए तुम लोग सरल हृदय से साधुओं के संग में रह करके भगवत प्रेम जो देना चाहते हैं, उस सेवा जो देना चाहता है, रति रासो भवे तीव्र और कुटस्थो जो भगवान कृष्ण है अभी जो बतलाया, उसमें आप लोगों की रुचि हो, ये साधु संघ का प्रतीक है, ये साधु संघ की विचित्र महिमा है। अथवा पादयो व्यसनार्दनः सनातन गोस्वामी बड़ी कृपा है, भागवत में और सब टीकाओं देखो जाकर के, बहुत हजारों टीकाएं हैं, किंतु ये सब अर्थ वह कुटस्थ का एक ही अर्थ कहेंगे जो मैंने पहले बताया, एक ही रथ में स्थित दुर्भिज्ञ, बस इससे अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं होता। किंतु सनातन गोस्वामी अनुग्रह करके हम लोगों के लिए ये सब परिवेशन करते हैं। कहते हैं आदेव व्यसनार्दन, अभी बताया क्या व्यसन जो है संसार की जो व्यसन, ये सब को अब देखो, अब और दूसरा एक अर्थ कर, अब अच्छे अर्थ में इसको कर, कैसे पाद जुगले व्यसन अर्दन, जब गोपियां राश में नित्य करती हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, पैरों के थकावट को कृष्ण अपने आप दूर कर देते हैं। वो कौन, रति रास में जो कृष्ण मुख्य हैं, देखते हैं कि गोपियां थक गई तो उनकी व्यथा को दूर करने वाले ये कृष्ण उनके संप दूर कर देते हैं, मुख को ऐसे पोंछ लेते हैं अपने पीताम्बर से, और पैरों का क्या करते हैं, थक गई व्यसन आपका किसके चलू। तो वैसे ही तुम ऐसे भक्ति पाओगे जो कृष्ण तुम्हारे ये उस समय में नित्य में तुम जाओगे रास में, उस समय रास में तुम यदि थक जाओगे तो कृष्ण क्या करेंगे, ऐसा उत्सव प्रदान करेंगे, ऐसा कौन दयालु होगा, कारण रास क्रीड़ा नित्य के ही प्रधान है, रास क्रीड़ा में नित्य प्रधान है, और नित्य के प्रधान होते से पद जुगलों का संचालन में भी कुछ कष्ट होगा, उस कष्ट को कौन दूर करता है, अपने दर्शन से मधुर वाणी से और अपने कोमल स्पर्श से कृष्ण उसको दूर कर देते हैं, तो ये भी सुयोग हो सकता है। और संसार के ये सब बातों की तो बात ही क्या, वैसे कष्ट को भी दूर कर देते हैं। अथवा अन्य व्यापार परता नष्ट, रास में जो विघ्न बाधाएं हैं, थकना भी तो एक विघ्न बाधा है, तो इसको भी दूर कर देते हैं, वैसे और सब विघ्न बाधाएं को तो क्यों नहीं दूर करते, इसलिए साधु संति ऐसी साधारण से लेकर के आत्मा के रूप में जो कि चेतो दर्पण मार्जनम, उसको तो मार्जन किया है, संसार दुख भी जाएगा, व्यसन सब दूर होगा, नत्व दूर होगा, साथ में तीव्र लालसा जगेगी, लालसा को पूर्ण करने के लिए रास में वो स्थान भी दे देंगे, और अंत में क्या करेंगे, रास में कुछ यदि श्रम हुआ तो उसको अपने मधुर वाणी से अपने कोमल हाथों के स्पर्श से उसको दूर, इतना सौभाग्य कौन देता है, ऐसे वैष्णवों की, आप जैसे वैष्णव जो है महात्मा है, आप मने मैत्रेय जी साधारण नहीं, मैं समझता हूं कि उस समय मैत्रेय जी जो कुछ बतला रहे हैं उनसे रूप गोस्वामी का यदि संग किसी को मिले तो उसका क्या होगा,
आसमान जमीन
पतन का साहित हो जाएगा। इनके सेवकों की परंपरा में कोई यदि हो और उसकी सेवा की जाए तो क्या होगा, मैत्री से भी अधिक फल उनको मिला। तो हम लोग ऐसे ही अत्यंत प्रभावशाली परंपरा में आए हैं। अपनी दुर्वासनाओं को छोड़ने की चेष्टा करो और ऐसे संघ में कुछ लाभ करने की चेष्टा करो, हम लोग का जीवन बहुत ही सार्थक हो जाएगा। कुछ दिनों में ही महाप्रभु जी की कृपा होगी और सब कुछ आज ही सनातन गोस्वामी जी करेंगे। साधु संघ की महिमा अब तक अत्यंत अद्भुत है, जिसे से मथुर ब्राह्मण तत्स्वरूपताम गतः, स्वरूप जैसा बन गया, जैसे स्वरूप मुक्त पुरुष थे वैसे बन गया। साधु संघ की ऐसी महिमा, इसलिए साधु संघ को सब साधनों और साध्यों में चूड़ामणि कहा गया और समस्त साध्यों के भी जो हमारे लिए अभी साध्य है उनके सिर पर नित्य करता है साधु संघ, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए कोई भी साधन भजन करो, कोई भी साधन भजन में आएगा वो साधु संघ के द्वारा ही आएगा। जो साधु संघ से जितना ही दूर हैं वो चाहे लाख साधन भजन करें, वो लाख साधन भजन होगा ही नहीं। सब कुछ निर्भर करता है साधु संघ के ऊपर। जिनका यथार्थ रूप में साधु संघ होता है वही भजन कर सकते, जिनका यथार्थ साधु संघ नहीं होता वो भजन नहीं कर सकते। पूर्व जन्म में भी जिनका साधु संस्कार संस्कार है वो लोग भजन में आए, जिनका वैसा संस्कार नहीं है आज तक, जो लोगों भी ने भजन करके भगवान को पाया है सब साधु संघ के बल से। श्रीमद् भागवत में इसीलिए बतलाया गया, जात धान
खगा गंधर्वा अप्सरसो नागा सिद्ध चारण गुह्यता विद्याधरा मनुष्य शूद्रा श्री अंतय विश्वपर्वा बलिवाण महश्चात विभीषण गज युद्ध वणिकप वैध सूर्या ब्रजगुप्त यज्ञपतन तथा
महा तक दे दिया
नाभि तो श्रुति गणा
एक बार श्रुति गण
वेद अध्ययन करे ना नौपासित महत्तमा गौरव न उपासना करे ना।
अब साधु संघ के फल से ये लोग, और हम लोग साधु संघ की अवहेलना करते हैं, साधु संघ को अंगूठा दिखलाते हैं तो क्या हो। इसलिए जिनको जो कुछ हुआ, हम लोगों को जो कुछ हुआ है, नहीं कुछ हुआ है हम लोगों को, किंतु जो कुछ भी हुआ है साधु संघ के द्वारा। गुरु जी को भी साधु में ही रख लो, उनका भी संग साधु संघ ही
साधु।
इसलिए और की तो बात क्या, असुर लोग भी हैं बलि बाण मैदानव
पांडव के संग,
पांडव उनके संग में, और खगा मृगा खग खग माने कौन
जटायु,
मृगा कौन अरे जंबवान मृगा, मृगा माने भूखी जाती
पशु जाती
पशु जाती
जंबवान हनुमान
हनुमान ये सब। और असुर में प्रहलाद बाण वृषभ विश्वकर्मा बलि ये सब। इस तरह से जितने भी लोग हुए हैं, अस्पराव में कौन, अस्पराव गंधर्व में कौन,
मतलब
गंधर्व में जल्दी बोल
नारद
बैठा है क्या बोल बे बोलो तो तुम रखे बोलो। अस्परा में कौन, अस्परा नाम दिया है इसमें
ना,
तो अस्परा जरूर कोई होगा अब अस्तर में ऐसे रख लो, नारद जी इनको आदेश दिया ब्रज में तुम लोग जन्म ग्रहण करके गोपियों की गुयक मने वो निषाद निषाद राज। तब हम लोग मनुष्य कुल में आए हुए हैं तो हम लोगों का क्यों नहीं होगा? यदि वैसा साधु संघ की महिमा के प्रति हमारा विश्वास हो, किंतु उन लोगों का क्यों हुआ? एकदम सरेंडर कर दिया, जितने इन लोगों में भी हैं सब लोग सरेंडर कर दिया। साधु संघ कुछ दिन किया और साधु संघ में जो कुछ पाया उनके आचरण में और विचार में साधुओं का, उन्होंने चक ग्रहण कर दिया। कोई दूसरी अभिलाषा नहीं थी। अरे क्यों चरे अभिलाषा लेकर के साधु संग करेगा, उसका नहीं होगा, जान बुझ करके। और जो अनजान में कर रहे हैं या काम से कर रहे हैं और साथ ही साथ में सरेंडर कर देंगे, उनके विचारों को ग्रहण करेंगे, संग होना चाहिए ना, सम्यक गमन होना चाहिए, तो जो सरल सीधा होगा, सरल हैले गोरा शिक्षा बुझी आ लोई बे, सरल होने से गोरा का शिक्षा समझ लेंगे। और वक्र है, वक्र मैंने जानबूझ करके साधुओं को ठगेंगे हम लोग, तो साधु को तो ठग नहीं सकते, नहीं ठग सकते जन्म जन्मांतर में। इसलिए कहते हैं अपूर्व फल है, कृष्ण प्रेम तक मिल जाएगा, इसलिए सरल होना चाहिए, सरल होने से प्रवेश हो जाएगा। और सरल नहीं रहेंगे साधु के संग में, हम अपनी इच्छा के अनुसार में उसमें कुछ अपना बनाने की चेष्टा करेंगे तो नहीं होगा, यह अनुभव की बात है। हम समझते हैं कि जब आदमी सरल हो जाए ना, तो अपनी चेष्टा से अपने सुख के लिए जो कुछ करता है और वैष्णव को सरेंडर कर देगा, उस समय गुरु वैष्णव की कृपा से वो भोग भी कितना बड़ा हो जाएगा उसका, अनायास ही गोपियों से बढ़ करके किसी को आत्म सुख है? गोपियां कुछ नहीं जाती, किंतु उनको जैसा सुख है और विश्व में ब्रह्मांड में गोलोक वृंदावन तक ऐसा किसी को सुख मिलता है किसी को? क्या कारण समझ में आ रहा है?
গোপীগণের যে আত্মসুখ এর থেকে তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ পেয়েছে ভগবানের সেবা করে?
তো বলছে না যে আর কেউ কৃষ্ণের ওই প্রসাদটা পায় না, সিও অমৃতান্তরতে প্রসাদ, অথচ আত্মসুখের কোনো লালসা নেই। এসেই গুরু বৈষ্ণবকে যদি আনুগত্য মে রাখতে কই ভজন করতা হ্যাঁ, আব হমসে বড়া কোন সুখী হোগা?
তৎসৌভাগ্যমদম,
हमसे बड़ा कौन सुखी होगा? बतलाओ तो संसारिक दृष्टि से भी, इतने लोग हमारा पैर दबाएंगे, इतना सेवा करेंगे, यौ सब करेंगे, सब लोग कपड़ा देते हैं, धोती देते हैं, और कोई चीज़ की कमी है? किस लिए, किस लिए? हम लोगों ने अनकंडीशनल सरेंडर किया गुरु की सेवा के, अभी भी जो कुछ है वो सब उनकी सेवा के, पूरा तो नहीं है किंतु तो भी है। ऐसे आप लोग भी यदि सुख की वासना भी होगी तो भगवान का शरण करने से, वैष्णव की नौकरी करने से, उनकी सेवा करने से सब कुछ अपने आप मिल जाएगा जो हम अपनी चेष्टा से करते हैं। इसलिए सब छोड़ करके, सब आशा भरोसा छोड़ करके उनकी सेवा करने से, सरेंडर करने से एकदम वहां तक की सब कुछ मिल जाता है। इसलिए सनातन गोस्वामी बड़े आश्चर्य के साथ में कह रहे हैं, ओहो परम अद्भुत ये साधु संघ की महिमा। कल हम लोगों ने एक श्लोक लिया था भागवत का, जत सेवया भगवता कुटस्थो मधुदेश। सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की कितनी सुंदर व्याख्या की, बहुत सुंदर, उसको कल हमने बताया। उसी के पुष्टि के लिए कहते हैं कि और ठीक है, सतं प्रसंगमं विरुद्ध संविदो भवन्त हित करण रसायनः कथा तज्जोसनात आशु अपवर्त वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्य। सनातन गोस्वामी जी इसका अर्थ कर रहे हैं, यह है कहाँ का कपिल देव और देवहूति संपन्न। कपिल जी मैया को कहा, हम समझते हैं कि उस पूरे अध्याय में उपाख्यान में ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, मूल्यवान श्लोक है। सतांग प्रसंगामम वृज्य संविदो भवंत हृत कारण रसायना, बिना किसी चेष्टा के साधु संघ में चुपचाप जाकर के बैठ जाओ, अनयासी हित करण रसायन वहां पर कथा हो। और वो हितकरण कैसी रसायन होगी, हृदय को भी अच्छा लगेगा और कानों को भी अत्यंत मनोहर लगेगा। और है कैसा, विज्ञ संविदो, विज्ञ विज्ञशाली, बहुत ही महत्व, बहुत शक्तिशाली। और संविदो माने क्या होगा, संविद माने की होगा, संविदो भवंती ने सतां प्रसंगाम में वीर्य संविदो भवंती हित कर्ण रसायन कथा वीर्य संविदो संविद यहाँ पर अनुभूति केवल जानना जानना नहीं, साथ साथ में विज्ञान हो जाएगा। संविदो एकदम समझ में एकदम अनुभूति हो जाएगी, क्या अनुभूति हो जाएगी, मैं कृष्णदास हूँ। अच्छा ये अनुभूति कब होगी, जान तो अभी हम लोग रहे हैं, अनुभूति हम लोगों को नहीं, अभी माया की अनुभूति है, माया के हम अभी हैं दास, गो दास अभी। इसलिए कृष्णदास हम सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं कान, किंतु इसकी अनुभूति करा देंगे तो वो कब होता है, माया जब हट जाएगी तो, इसलिए पहले माया हट जाएगी उसके द्वारा, तब तो होगा, नहीं तो जानेगा कैसे। और क्या जानेगा, कृष्ण ही परम तत्व है, वो सर्वशक्तिमान है, अखिल रसामृत सिंधु हैं, अनुभूति करा देंगे। अखिल रसामृत सिंधु कैसे, श्रीमद्भागवत में कृष्ण का जैसा रूप गुण इत्यादि बतलाया गया, सबकी अनुभूति करा देंगे, यहाँ तक कि मधुर रस तक की अनुभूति उसको करा देंगे, गोलोक वृंदावन की अनुभूति करा देंगे। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, नित्यानंद प्रभु के संग से उनकी कृपा से ही हमको वृंदावन का दर्शन हुआ, रूप सनातन का संग मिला, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, धाम की कृपा हुई, सब कुछ उनकी कृपा से, ये उनका संग का प्रभाव। रघुनाथ दास गोस्वामी को कैसे हुआ, हरिदास ठाकुर का प्रारंभ ही, यदुनंदन आचार्य का, और इसके बाद में नित्यानंद प्रभु की वो पीछे महाप्रभु जी का संग मिला नित्यानंद प्रभु की कृपा से। इस तरह से हम सब समय देखते हैं, तो कहते हैं कि साधु समागम हृदय को निर्मल कर देता है, स्वच्छ कर देता है, हृदय को स्वच्छ और निर्मल करके क्या करता है, उन साधुओं वो जो साधु हैं अनायास ही निर्झर की भांति बिना किसी से पूछे गैया बछड़े को देख करके दूध देने लगे, और इनका दूध सब समय चुचवाता है, और वहां पर यदि कोई बैठ करके बैठ जाए तो क्या होगा, हृदय और कर्ण की रसायन, हृदय और कर्ण की रसायन किस लिए कहा, पुनैन है रोग को दूर करता है किंतु कड़वा होता है, मुख में लेने से कड़वा लगे, और किसी को कमला रोग हो गया है तो मिश्री कैसी है, मीठी, और से वो रोग भी दूर हो जाएगा। तो ये कथा हरि कथा उनकी कैसी होती है, ब्रजवती तो होती ही है, कानों को भी बड़ी रसायन लगती है और हृदय में जब उसका अर्थ बोध होता है, जैसे कल हम लोग पाठ कर रहे थे ये सब का अर्थ आस्वादन करता, कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से राष्ट्र पंचाध्याय का कोई श्लोक या गोपी गीत का कोई श्लोक, अखनतां फलमिदं न परम विदा, जब इसका अर्थ आस्वादन होता है तो कितना सुंदर अच्छा लगता है। इसमें जो कथाएं होती हैं बड़ी बीज स्वरूप, बड़ी शक्तिशाली औषधि के रूप में होती है, और भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि को के महात्म को संवेदन करने वाली होती है। संवेदन माने उसको अनुभूति कराने, उसी के सेवन से आंसू मतलब बहुत शीघ्र ही तज्जोसनात आशु, आशु माने
जल्दी ही
शीघ्र ही हो जाता है। क्या होता है? अपवर्ग वर्तम, अपवर्ग वर्त माने
जिनके पक्ष में अपवर्ग
अपगत हैया छे
वर्ग,
वर्ग माने की चार चतुर वर्ग, ताले इटा होते धर्म अर्थ काम मोक्ष तक हो गया जी। ये वो भक्ति, भक्ति ही कृष्ण को पाने का एक मार्ग मार्ग है। ये लोग अनायास रूप में पहले पथ में पड़ जाएंगे, ये सब अपने आप हो जाएगा। अपवर्ग माने अविद्या निवृत्ति और मोक्ष हैया छे जहाँ वर्तम प्राप्त, रास्ते में मोक्ष इत्यादि हो गया खत्म, आनुषंगिक भक्ति का आनुषंगिक फल में ये सब हो जाता है। ये सब के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, और होने के बाद में भगवान को पाने के लिए वो क्या होता है, श्रद्धा रति और भक्ति। अब यहां पर श्रद्धा माने समझ लो साधु संग से श्रद्धा हुई, रति माने हुआ भाव भक्ति, और भक्ति माने यहां क्या समझो, प्रेम भक्ति, इस रूप में समझो। अथवा सनातन गोस्वामी जी कहते हैं अनुमाने पश्चात, साधु संघ के पश्चात ही कृष्ण प्रेम तक हो जाता है। तो कैसे प्रेम हो जाता है, यहां पर जो क्रम दिखलाया गया है, अभी अभिवक्षित अभिवीक्षित अभिवक्षित, अभिवक्षित माने क्या, थोड़ा सा क्रम का भग्न हो गया। श्लोक की सौंदर्य के लिए और इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा, उनको होना चाहिए कैसे, श्रद्धा भक्ति रति, वैसे उसका अर्थ कर दिया, उस वो क्रम भी ठीक है। क्या क्रम, पहले श्रद्धा होगी, श्रद्धा के बाद में होगी रति, रति ऐसे ही नहीं उछल करके नहीं हो जाएगी, श्रद्धा, श्रद्धा बाद में फिर साधु संग, इसमें बाद में गुरुकरण, दीक्षा शिक्षा, इसके बाद में भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, इसके बाद में निष्ठा रुचि आसक्ति, इसके बाद में इतना क्रम, अच्छा आप ये कह रहे हैं, किंतु उसमें लिखा गया है बहुत जगहों में भक्ति का फल है प्रेम, प्रेम का फल भक्ति नहीं है, इसलिए भक्ति का प्रेम साधन भक्ति का फल है भाव भक्ति, जो प्रेम का अंश है और उसका फल है प्रेम।
आपने बताया श्रद्धा तो साधन भक्ति रोती और भाव भक्ति तो प्रेम।
अब फिर अब ये कह रहे हैं उसका अर्थ दूसरा लेकर, पहले श्रद्धा, इसके बाद में श्रवण कीर्तन स्मरण युक्त भक्ति, ये भक्ति होगी, श्रवण कीर्तन स्मरण और 64 प्रकार की या पंचधा भक्ति, उसमें श्रवण कीर्तन स्मरण सभी आ गया। ये भक्ति कीर्तना की भक्ति, और उसके बाद में रति, रति में यहाँ पर प्रेम, कौन प्रेम, महा भाव वाला रति। इस प्रकार से समझना चाहिए, क्यों, भक्त्या संजायता भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति होती है। तो पहले श्रद्धा जब हुई तो ये भक्ति लता का बीज हुआ, ये भक्ति के ही द्वारा भक्ति होगी। कैसे, जिन लोगों में साधु संग में ये भक्ति है, उसके साथ रहने से उसके हृदय की भक्ति इसके हृदय में प्रवाहित होगी, बहेगी, संक्रमित होगी। तो वो कैसे पहले आएगी श्रद्धा के रूप में, और इसके बाद में धीरे 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 धीरे। इसलिए यहां पर बतलाया भक्ति से ही भक्ति होती है, इसलिए प्रेम प्रेम भक्ति का फल है। भक्ति माने यहां साधन भक्ति, इसलिए पहले श्रद्धा, इसके बाद में साधन भक्ति, इसके बाद में भाव भक्ति, फिर प्रेम। इसलिए इसको क्रम को अभी इस रूप में ले लो, श्रद्धा भक्ति रति। अतः प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति का ही फल सर्वत्र ऐसा कहा जाता है। ध्रुव जी ने भी साधु संघ की महिमा बतलाई है। ये साधु संघ के अतिरिक्त नहीं होगा, अपने आप भजन करने से नाम श्रेष्ठ है, इर मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, यह श्रेष्ठ है, किंतु कोटि कोटि वर्ष करते रहो, रगड़ते रहो, तभी वो प्रेम नहीं फल देगा। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब ता न पाए कृष्ण पदे प्रेम। साधु संघ के द्वारा वो भक्ति परिमार्जित होगी तब प्रेम फल देगा। इसलिए नारद जी को कहते कैसे मिल गई, नारद जी ने साधन भजन किया, साधु के उपदेश से भजन करने के बाद में जब उनकी सिद्धि हो गई तब फिर सर्वत्र वो कर रहे हैं। साधु संघ के प्रभाव से, किस भाव से करना चाहिए, मूड क्या होना चाहिए, ये कौन देगा, साधु संघ देगा। भक्ति कैसे स्वच्छ होगी, नाम कैसे स्वच्छ होगा। सब लोग जानते हैं कि भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, सभी लोग करते हैं कुछ न कुछ, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करता है, किंतु अतः कृष्णाम आदि न भवित राज्य मिल गई, ये नहीं जानते हैं। ये भगवान का नाम इंद्रियों से अतीत है, प्राकृत इंद्रियों से। हम लोग भी पहले यही जानते थे जब हम लोग भगवान का नाम कर रहे हैं, शुद्ध नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे। अब विचार करके देखते हैं कि कहाँ आए, जीवन में एक बार भी नामाभास हुआ कि नहीं, यही विचार का हम करके देखते हैं कि हुआ कि नहीं, खोजते हैं तो नहीं मिलता है नामाभास। शुद्ध नाम की तो बात छोड़ दो, हमारा नाम किस लिए होता है, जब साधु संघ हम करेंगे तब समझेंगे। अतः कृष्णाम आदि न भवित ग्राज्य में, हम लोग जब भी नाम करते हैं और जब शुद्ध नाम होता है, दोनों में क्या पार्थक्य है। अभी हम अपने प्रयत्न से हरि नाम करते हैं, प्रयत्न से कथा सुनते हैं, एकाग्र हो करके खूब चित्त लगा करके उसमें परिश्रम होता है हरि नाम करने में, और जब वो अपने आप नाम होगा तो क्या होगा, जिह्वा पर कृष्ण नाम स्वयं
नित्य
उसमें
तो नहीं हो रहा है ना, यही तो नहीं हो रहा है,
ये इसी को शुद्ध नाम। इसलिए हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि अरे भाई अभी कहाँ नाम,
स्वाभाविक रूप से स्फूर्ति प्राप्त होना,
स्फूर्ति हो। इसलिए तुम लोग भी समझो इस चीज को, साधु संघ के बिना ये समझ में नहीं आएगा। उस समय अपने जीवा की परिश्रम को, जीवा के कसरत को हम कहते हैं अरे भाई हम तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ नाम है वो हम कर रहे हैं, किंतु क्या कर रहा है तुम अभी, ये तुम अभी नहीं समझेगा। साधुओं के संग में जाने पर तब उसके लिए प्रयत्न होगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। हम जो कर रहे हैं इसी को शुद्ध नाम समझ लेते हैं। ये कब होगा, जब हृदय निर्मल हो जाएगा और भगवान कृपा करके नाम के रूप में जीवा पर नित्य अपने आप करेंगे, तो उस समय सोते चलते फिरते उठते बैठते तुम नहीं चाहेगा जो हरिनाम हो, जीवा को पकड़ना पड़ेगा पैखाना के समय में, अपवित्र समय है, इसलिए हम जीवा हम नहीं कर, जीवा मानती नहीं है, जो करके महापुरुष जैसा पकड़ेगा तभी वो नहीं मानेगा, तभी वो नित्य करेगा, ऐसा हो जाएगा। नींद नहीं आएगी, नींद खुलेगी तो देखा जा हरे कृष्ण 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 होगा, तुम और बात की चिंता करेगा, इतने में देखेगा जिसे वही आ रहा है, यह है अपने आप अनायास रूप में होगा। और अभी हम कर रहे हैं, अभी परिश्रम होता है, नींद आएगी, आलस्य आएगा, जम्भाई आएगी, दूसरी बात याद आ जाएगी, उसमें तरह तरह की विघ्न बाधाएं, उसमें वो क्या है
ना, विक्षेप,
हाँ विक्षेप आएगा। विक्षेप किसको कहते हैं, विक्षेप किसको बोलो तो, विक्षेप रघुनाथ बोलो तो, विक्षेप किसको कहते हैं, मान लिया कि हम भगवान का नाम कर रहे हैं, हम अन्य करने बैठे हैं, गुरु का मंत्र कर रहे हैं या गोपाल मंत्र कर रहे हैं, गोपाल का मंत्र एक बार आरंभ करके एक बार यहाँ पर उंगली आई और तरह तरह की बातें याद आने लगी, मंत्र में भी विक्षेप हो गया। हम लोग नाम करते हैं, पहले नाम में ही देखो हरे कृष्ण पूरा 16 जो नाम होता है उसमें तुम्हारा विक्षेप होता है कि नहीं, मन कहाँ है। आरती करते हैं, तुम लोगों की बात क्या है, मैं जब यहाँ खड़ा रहता हूँ मैं सोचता हूँ कि आरती का एक एक अक्षर हम ठीक करके इसमें लगा रहे हैं, उसके साथ साथ कभी कभी देखते हैं चित्त कहाँ चला गया, ये सब विक्षेप, ये सब कैसे आएगा, दूर कैसे होगा, साधु संग से भाई होगा, उस समय जब हो जाएगा साधु की कृपा अपने आप, तुम नहीं चाहेगा तभी वो तुम्हारे हृदय हृदय में जीवा पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम बड़े भाव के साथ में आंखों का आंसुओं को लेकर के चित्त को द्रवित करके आएगा, ये है अपने आप। हरि कथा में रुचि होने पर कैसा होगा, शुद्ध रूप में जब आएगी हरि कथा माने भगवान ही आ जाएगी, बिना परिश्रम के ही, बिना किसी चित्त स्थिर किए हुए अपने आप सुनने में बड़ा आनंद, पद पद पर आनंद हो, यह है हरि कथा। स्मरण में तुमको स्मरण करने के लिए बार बार मन को नहीं लाना पड़ेगा, मन अपने आप उसमें रंग जाएगा, अपने आप होने लगता है, यह है। अतः कृष्णाम आदि न भवित ग्राह्य, हम लोगों के नाम में और शुद्ध नाम में यही अंतर, इसको विचार करके देखो और लगाओ अपने विचार करके मापदंड देखो, जैसे हमारा अभी नाम हो रहा है कि नमापराध हो रहा है कि नमाभास हो रहा है, इसलिए साधु संघ में रहने से उनके विचारों को ग्रहण करने से, संग माने सम्यक रूपे अनुगमनम, अनुगमन करने से तभी अपने आप सहज रूप में हो जाता है, इसका नाम है भजन। चेष्टा कर रहे हैं हम, कल हम कहाँ थे, कौन क्लास में थे, आज कौन क्लास में हुए, यदि हम 16 वर्ष तक क्लास 4 में ही पढ़े हुए हैं, एक आदमी हमारे यहाँ थे हम लोगों के साथ में पढ़ने वाले, हमसे बहुत आगे पढ़ते थे, तो 15 वर्ष मैट्रिक में फेल हुए और धनी घर के लड़के, वो उनके घर के लोग कहते हैं नहीं पढ़ो 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 पढ़ो, तो 15 वर्ष रेगुलर स्कूल में पढ़ करके पास नहीं हुए, तो फिर का जैसा प्राइवेट, तो प्राइवेट विद्यार्थी किंतु पास नहीं हुए, तो वैसे ही हम लोग उसी श्रेणी के छात्र हैं। जब हम देखते हैं हरिनाम करते हैं तो देखो, अच्छा अब कोई हमको अपमान करता है तो क्रोध होता है कि नहीं, हम हरिनाम करते हैं तब उस समय में चित्त चंचल होता है कि नहीं, विक्षेप होता है कि नहीं, कोई संसारी कामना वासना आती है कि नहीं, और भी विचार करो, मान लिया कि कोई आर्थिक लाभ है आप कहीं परमार्थिक लाभ है, दोनों साथ साथ में हो रहे हैं, मान लिया कि आज हमको कोई हरि कथा सुननी है और उसी समय कोई हमारा अपना कोई परिचित धनी धनाढ्य आदमी कोई आ गया जी भाई हमको थोड़ा सा गोवर्धन परिक्रमा कर दो या हमको वृंदावन दिखला लो, हम क्या करेंगे, इस पर विचार करो। यदि उधर में चित्त जाता है तो समझो जे अभी बहुत पानी में हम लोग हैं। इसी तरह से सब समय विचार करके देखो जो हम कल कहाँ थे, आज कुछ ऊपर उठे हैं कि नहीं उठे हैं, या इतने वर्ष हो गए हम जो पहले थे उससे हम कितनी उन्नति की है, इस पर विचार करना चाहिए। ये साधु संघ में विचार करने का मौका मिलता है, नहीं मिलता तो आज भी जो हम कर रहे हैं तब तुम लोग विचार करके देखो हम कितने पानी में हैं, हम क्या कर रहे हैं, साधन भजन हम कैसा कर रहे हैं, हम भजन को उन्नत बनाने के लिए कुछ चेष्टा कहाँ तक हम कर रहे हैं। ये साधु संग रहने से ये लाभ है। तो कह रहे हैं ध्रुव महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भक्ति मुह प्रवाहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महतां अमलाशयानं जेना अंजसो उल्वनम उर्व्यसनम भवाब्धिं नेस्ये भगवत गुणकथा मृतपान मत्तः। भक्ति मुह प्रवाहतां त्वयि मे प्रसंगो, त्वयि प्रसंगो, हमारा मन हमारी भक्ति हे प्रभो प्रवाहता प्रवाहित हो, मोह माने सब समय एक एक क्षण तक वो लगी जाए। कहां ये भक्ति मिलेगी, जो सब अमल आशय मलाशय है, भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महतां अमलाशयानाम अमलाशयानाम अमल आशयानाम आशयानाम मने हृदयानाम, जिनका अंतर हृदय जो कोई भी मल नहीं है और वहां पर भक्ति नित्य निरंतर रूप में है अनंत दे प्रवाहित, आपकी भक्ति आपकी जो भक्ति होती है वही पर प्रवाहित होती है। तो ऐसे महापुरुष जो हैं उनके उनकी आपके प्रति ऐसी नित्य प्रवाहित होने वाली भक्ति वहां पर विद्यमान रहती है, हमारा ऐसा हो जाए आप ऐसी कृपा करें आपकी कथा श्रवणार्थ सुनने के लिए उन लोगों के सहित ही हमारा प्रकृष्ट जीव जिस प्रकार से संग हो उन लोगों का संग हम मैं चाहता हूं, और कुछ आते नहीं चाहते, आप में प्रेम हो ये सब मैं नहीं जानता, वो क्या हो अपने आप हो जाएगा क्योंकि वहां पर प्रवाहित हो रही है और उनके साथ रहेंगे तो वो उसमें डुबकी लगा लेंगे अपने आप, नहीं होगा तो बाढ़ आएगी तो बाढ़ से अपने आप उनको डुबो देगी। ऐसे ये साधु संघ सब कुछ छोड़ दें, भजन भी हम किसी कारण से जब छूट गया किंतु साधुओं का संघ नहीं छूटा तो कोई भी हानि नहीं, और उनके साथ भी साधुओं के बाहरी रूप में उनका साथ में रहते हैं किंतु संग नहीं करते हैं, उनके विचारों का अनुधावन नहीं करते हैं, उनका अनुगमन नहीं करते हैं, आचरण विचार नहीं लेते हैं, तो वो साधु संग नहीं। यदि कहते हैं कि तुमने मोक्ष क्यों नहीं मांगा, मोक्ष क्यों नहीं मांगा अनंत देव, आप अनंत देव हैं तो ये कहता जे हमको संसार से मुक्त दे दो, अरे नहीं हमको जरूरत, जहां भी जन्म हो जिस रूप में जन्म हो कीट पतंग के होकर के आऊं, किंतु आपके ऐसे जो अमल आशय भक्त लोग हैं जिनके हृदय में सब समय निरंतर भक्ति प्रवाहित होती रहती है, ऐसे लोगों का संग हो जिससे मैं आपकी लीला कथाओं को जो बड़ी शक्तिशाली हैं उनको मैं श्रवण कर सकूं। मुक्त क्यों नहीं मांगा, उसके लिए कहते हैं भक्ति का अनुसंगिक फल मुक्त स्वयं उपस्थित हो जाएगा, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवेते स्मान धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा, समय की प्रतीक्षा करता है मुक्ति और भुक्ति सब कब भक्त को जरूरत होगी हमारे तरफ देखेंगे, मैं उनकी सेवा करूंगा, इसलिए मुक्ति की कोई मांगने की जरूरत नहीं है। अरे मुक्ति तो भगवान असुरों को दे देते हैं जो कि भगवान को या भक्तों को जान से मारने के लिए आए और उनको भी मुक्ति दे दी, ये तो आसुरी की गति है, इसको भक्त क्यों चाहेगा, इसे भक्त लोग नहीं चाहेगा। एक आदमी की मुक्ति हो गई अगासुर बकासुर, और एक आदमी मुक्त नहीं हो करके भक्तों के संग में निरंतर हरि कथा सुनता है, दोनों में कौन उन्नत है, कौन मुक्त है? जो हरि कथा सुनता है वो मुक्त है। वो सब नहीं, वो तो एक तरह से और भी जहन्नम में गया, उसको कभी भक्ति ही नहीं होगी। इसलिए ध्रुव महाशय जी ने कहा महतों के संग में आपकी लीला रूप नाम रूप गुण लीला की कथाएं विजवती कथाएं होती हैं, वो अमृत से बढ़कर के है। उनका पान करने से उरु व्यसनम, उरु व्यसन माने कठोर जो व्यसा व्यसन है, व्यसन माने वासना, वासना माने वासनाओं का भी मूल है अविद्या, अविद्या भी दूर हो जाती है। ये वासना की तो बात कही, सब कुछ समाप्त हो जाता है। अच्छा महाप्रभु जी का संग वो छोटा है, छोटा काला कृष्ण दास ने किया कि नहीं? महाप्रभु का साथ में इतना दिन था, नहीं किया संग होने पर। इसलिए हम लोगों को काला कृष्ण दास नहीं होना है, हम लोग संग करेंगे। संग दूर रहने से भी संग होता है। एक तो आचार्य श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध महाराज पंच अध्याय के अंदर या कहां पर जो निकट न रह करके भी यदि दूर रहता है,
कीर्तना दर्शना मई
ध्यान
भावन कीर्तना
भावन कीर्तना
तथा सन्निकर्षण
सन्निकर्षण से वो उतना नहीं होगा। निकट कहां से रहेगा? सब समय उनके नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि में लगा रहे हैं, ये नहीं करते हैं। और ये नहीं करते हैं, निकट में है तो बहुत दूर है, गोपियों से कभी दूर नहीं है। क्यों? द्वारका वो जा सकते हैं किंतु रह नहीं सकते, सब समय गोपियों के समीप। इसी तरह से हम लोगों को भी साधन भजन करना चाहिए।